अपना पत्थर वगैरह ला, बराबर ढूंढ के मार देता हूँ। जय राधा माधव करो करो कुंज बिहारी जय जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जनवल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय श्री श्री गुरु गौरांग धारी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय जय मित्र वज्रष्टोत्र शताशी समाधेश श्री वक्रंत श्याम श्री प्रभुपाद महाराज की जय जय मित्र परम सुपरि वज्रष्टोत्र शताशी भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय जन्माचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय श्रीमद भक्तविंद की जय श्रीमद भागवत कंधराज की जय निताय गौर आनंद हरि हरि गौर नाम श्रेष्ठ मनुमपे शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तैश्चग्रजं मरुपुरीं माथिरिङ्गोष्ठवादीं राधाकुण्ड गिरिवरो महो राधिका माधवासं प्राप्तजिष्यपहितकृपयां श्रीगुरुं चङ्गतोऽस्मि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभिः च पतितानां पाभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्रादिकमादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् आनन्दलीलामविग्रहाय हेमावदिब्बछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते सा सुखनिवेदिता सद्बुद्धसन्नभावजीतरुचिलाकृष्टसारस्तदियं व्यातनुत कृपयां यस्तप्तदीपं प्रधानं तमखलब्रिजिङ्गलं वससू नुनतोऽस्मि भवे भवे यथा भक्तिपादस्तव जायते तथा पुरुषदेवस्य नाथस्तनुजतः प्रभो नाम सङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनां प्रणामं दुःखशमनस्तु तं नमामि हरिपरम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरां चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नाष्टप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय द्वि श्लोक नंबर 18। ततः जगत्मङ्गलाम् अच्युत अंसाम् समाहिताम् सुरसुतेनाम् देवी दधार सर्वात्मकम् आत्मभूतम् काष्ठा यथा आनंदकरम मनस्तः ततो जगन्मंगलमच्युतांसं माहितं सुरासुतेन देवी दधार सर्वात्मकात्मभूतां काष्ठं यथानन्दकरं मनस्तः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांसं समाहितं सुरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतां काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांसः समाहितं सुरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतां काष्ठां यथानन्दकरं मनस्तः। बोलो तत्पश्चात जगत मंगलम ब्रह्मांड भर के जीवों के लिए मंगल प्रद अच्युत अंशम भगवान जो अपने अंश में उपस्थित छह अशरीर से कभी वियुक्त नहीं होते समाहितम पूरी तरह स्थानांतरित सुरसुतेन सुरसेन के पुत्र वसुदेव द्वारा देवी देवों की देवी ने दधार वहन किया सर्वात्मकम सबों के परमात्मा आत्मभूतम समस्त कारण के कारण काष्ठा पूर्व दिशा यथा जिस तरह आनंदकरम आनंदमय चंद्रमा मनस्तः मन के भीतर स्थित होने से अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण जगत के लिए मंगलमय भगवान अपने अंश समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों को आदि चेतना समस्त कारण के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। मनस्तः शब्द बताता है कि भगवान को वसुदेव मन से देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर दिया। हमें ध्यान देना होगा कि भगवान को देवकी के हृदय में किसी सामान्य विधि के द्वारा अतु दीक्षा द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह यहाँ पर दीक्षा का महत्व का उल्लेख हुआ है। जब तक आपने हृदय में भगवान को वहन करने वाले उपयुक्त व्यक्ति द्वारा मनुष्य दीक्षित नहीं होता, तब तक उसे अपने हृदय के भीतर भगवान को वहन करने का शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अच्युतांशम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि भगवान सर्वैश्वर्य पूर्ण धन बल जस ज्ञान सौंदर्य तथा ताक से पूर्ण है। वो कभी भी अपने निज ऐश्वर्य से विलग नहीं होती। ब्रह्म संगीत में ठीक कहा गया है, रमादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। भगवान अपने सारे अंशज राम निसिंह बरा के सहित सदैव स्थित होते हैं। इसलिए यहाँ पर अच्युतम शब्द का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इससे सूचित होता है कि भगवान सदैव अपने अंशज ऐश्वर्य के साथ उपस्थित रहते हैं। तब योगीजन जिस रूप में उनका कृत्रिम ढंग से चिंतन करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। धनावस्थितेन तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः। योगीजन अपने मन के भीतर परम पुरुष को ध्यान करते हैं किंतु भक्त के लिए भगवान उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति को प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा के माध्यम से जागृत किए जाने का ही आवश्यकता पड़ती है। भगवान को देवकी के गर्भ के भीतर रहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि देवकी के हृदय में उनकी उपस्थिति ही उनकी धारण करने के पर्याप्त थी। यहाँ पर वह सोचने के लिए मना किया गया कि वसुदेव द्वारा देवकी गर्भ से कृष्ण उत्पन्न हुए और उन्हें आप गर्भ में धारण किए रहे। जब वसुदेव भगवान के अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वह उस चमकते सूर्य जैसे लग रहे थे जिसकी चमचमाती किरण से सामान्य व्यक्ति के लिए सदा असह्य तथा झुलसाने वाले होती है। वसुदेव के शुद्ध हृदय में भगवान का जो रूप स्थित था वो कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं है। कृष्ण के रूप में कहीं भी और विशेषतः हृदय में प्रकट्य धाम कहलाते हैं। धाम न केवल कृष्ण के रूप का अपितु उनके नाम रूप गुण तथा परिकर का भी द्योतक है। सब कुछ एक साथ प्रकट होता है। इस तरह अपने पूर्ण शक्ति समेत भगवान का नित्य रूप वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित कर दिया गया जिस तरह डूबते सूर्य के किरणों से पूर्व में उदय होने वाले चंद्रमा को स्थानांतरित हो जाती है। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए वह सामान्य जीव की परिस्थिति से परे हैं। कृष्ण कहीं भी रह सकते हैं, वह नारायण है। जैसे अपने अंश से भगवान नृसिंह बराह जैसे अवतार के साथ रहते हैं, इस तरह वह जगत के सामान्य परिस्थिति से परे होते हैं। इस तरह देवकी अद्वितीय एवं सृष्टि के कारण स्वरूप भगवान का धाम बन गई। किंतु कंस के घर में होने के से वह दबे हुई अग्नि जो अप्रयुक्त विद्या की तरफ देख रही थी। जब आग को किसी पात्र के दीवार से ढांक दिया जाता है या किसी लोटे में रख दिया जाता है तो अग्नि की प्रकाशमान किरण नहीं देखती। इसी तरह जिस ज्ञान से जनता का लाभ नहीं पहुँचता है वह श्लाघनीय नहीं है। क्योंकि देवकी को कंस के बंदी गृह में चार दीवार के भीतर रखा गया है, अतएव उस दिव्य सौंदर्य को कोई नहीं देख सकता था जो उनमें भगवान को धारण करने से उत्पन्न हुआ था। इस टीका करते हुए वीर राघव आचार्य लिखते हैं, वसुदेव देवकी जठरो हृदय भगवत संबंध। वसुदेव के हृदय से देवकी के गर्भ में भगवान का प्रवेश दो हृदय का मिलन था। समझ गया साहब? नहीं, इतना अच्छा से प्रभुपाद ने बताया, फिर क्या तकलीफ होगी। हम लोग प्रथम से दसम आ गया एसएससी श्रीमद् भागवतम कहते हैं अत्र सर्व विसर्गस्य स्थानोपशमोतय मन्यंतर ईशान कथा निरोधो मुक्तिर आश्रय दशमे दशमे तब आश्रयत्व विग्रह दशम में क्या है आश्रय विग्रह आश्रय विग्रह भगवान श्री कृष्ण तो हम लोग पहले से नवम तक इतिहास पुराण इत्यादि के द्वारा भगवान का अवतारा बोली का कथा श्रवण करके आ रहे हैं क्योंकि भगवान का अवतार का अगर कथा श्रवण नहीं करेंगे तो मायिक बुद्धि दुरुभूत नहीं होगा मायिक बुद्धि दुरुभूत करने के लिए ये हमारा जो पहला से नवम तक अध्ययन करना जरूरी होता है और हर स्कंध में हम लोग देखेंगे भगवान का किसी ना किसी अवतार का और उनका साथ में किसी भक्त का लीला कथा है ये सब सुनते सुनते हम लोग के ज्ञान हुआ कृष्ण स्वयं भगवान है और उस भगवान कथा जो हम लोग श्रवण करते हैं अभी तो सुनते आ रहे हैं उस भगवान का धारण करने का जो क्षमता है वो क्या कहते हैं दीक्षा इस यहां पर कहा गया है दीक्षा विधि के द्वारा वसुदेव से दीक्षित तो होकर के देवकी ने भगवान को धारण किया दीक्षा क्या है दिव्य ज्ञानो जतो दिव्यात पुर्यात पापस्य संखयम जिस दिन व्यक्ति दीक्षा लेते हैं उस दिन से पाप कर्म में फुष्ट हो जाना चाहिए जब जगह या रमाधाई मिला था तो महाप्रभु के चरण में दंडवत करके लोग कहा महाप्रभु ने कहा ये जगाई है माधाई आज तक तुमने जितना सारे पाप किए हैं वो उस पाप का हम सब ले लेंगे इसका बाद अगर नहीं करोगे तो उन्होंने क्या कहा आर नारे बाप जो हो गया बहुत हो गया इसका बाद और कोई पाप कार्य नहीं करेंगे ये दीक्षा है तो दीक्षा लेने के बाद हमें पाप कार्यों को इससे फुल स्टॉप दे देना चाहिए लेकिन हम कर नहीं पाते हैं ये हमारा में कमजोरियां है अपराध तो लंबा बात है जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारी जगन्नाथ बलभद्र जय ये जो पाप कार्य वो भी जो है तो दीक्षा जब लेते हैं तो कुर्यात पापस्य संखयम जितना सारे पाप जन्म जन्मांतर का किया था वो सब क्षय हो गया जिस दिन दीक्षा मंत्र मिला उस दिन भगवान हृदय में विराजित तो हो गया देवों की जो हुआ ना शास्त्र प्रमाण देते हैं ये वसुदेव के द्वारा दीक्षित होकर के देवों ने कृष्ण को अपना हृदय में धारण किया यहाँ प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे है अच्छी बात दिए हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को बहन नहीं कर सकते गुरु नहीं हो सकता है जो व्यक्ति कृष्ण को बहन हृदय में बहन करने का जिसका क्षमता नहीं है वो गुरु नहीं हो सकता है जिस प्रकार वसुदेव ने अपना हृदय में कृष्ण को वहन करते रहा फिर उन्होंने दीक्षित किया तो अगर हमें गुरु बनना है तो हमें भी कृष्ण को वहन करने का सामर्थ्य होना आवश्यक है और जब दीक्षा दिया जाता है तब उसको धारण करने का क्षमता भी शिष्य में होना चाहिए कभी कभी देखा जाता है शिष्य का योग्य हो या अयोग्य हो गुरु महाराज उनको दीक्षा देते हैं लेकिन ईश्वर को अपने आपका योग्यता आ जाना चाहिए। इसमें दो बात है, एक अगर दुरात्म नहीं हो तो, जैसे दुरात्म किसे कहते हैं, जैसे श्रद्धा पूर्वक हरिनाम का जप करना चाहिए, बराबर, हेला पूर्वक नहीं, हेला क्या है, ताच्छिल्य, इसको हेला कहते हैं, हेला पूर्वक जप करके तो क्या होगा, अपराध होगा। लेकिन पद्म पुराण क्या कहते हैं, श्रद्धा व हेलाया तारय कृष्ण नाम, श्रद्धा पूर्वक आप हरिनाम जप करो, हेला पूर्वक आप हरिनाम को जप करो, वो नाम आपको उद्धार करेगा। तो विरोधाभास होता है कि नहीं, बोलता श्रद्धा पूर्वक जप करो चाहे अपराध लेकर जप करो, हेला मीन्स अपराध हो जाता है। तो इस जो हेला शब्द, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, अगर हमारा में दुरात्म ना हो, दुरात्म मतलब दुष्ट बुद्धि, हमारा पे ज्ञान है कि हमें श्रद्धापूर्वक हरिनाम जप करना चाहिए, फिर भी हम श्रद्धापूर्वक जाप ना करके ताच्छिल्य भाव से जप कर रहे हैं, इसको बोलता है दुरात्म। रास्ता में लोग जा रहा है, उसके चीज मालूम नहीं है कि वह श्रद्धापूर्वक नाम का जप करना चाहिए। वो अगर कृष्ण बोले चाहे राम बोले चाहे नृसिंह बोले चाहे वराह बोले चाहे ब्राह्मण कुछ भी बोले, उसका उद्धार हो जाएगा, लेकिन हमारा नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं, जब तक हम समझ नहीं पाते थे तब तक तो ठीक था, तब तक हेला हमारा मुक्ति का कारण बनता था। लेकिन जब हम समझ में आ गया जो हरिनाम का जब श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, तब तो हमें हेला अपराध में गण्य हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए अजामिल को उद्धार हो गया था, अजामिल को ज्ञान नहीं था। ये नारायण उच्चारण करना श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, इसलिए उसको दुरात्म नहीं हुआ। लेकिन हमारा में, हम जानते हैं, जरूर सुबह पढ़ते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस हरिनाम का जप नहीं करते वो भी अपराधी है। 10 नंबर हम बोलते हैं ना, क्या हमें ज्ञान है, एक ज्ञान का बाद अगर अशुद्धा हो जाता है ना तो हम अपराधी हो जाते हैं, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। ये उस जगह का जो प्रभात खंडो का जो नरमात्र तारे कृष्ण नाम आरिश हेला का, ये अंतर है। ए स्थिति, हम लोग कहाँ पहुंच गया, मथुरा, हम सब मथुरा में निवास कर रहे हैं अभी। वैकुंठ ओहो धन्य मधुपुरी वैकुंठस्य गरीयसी दिनमेकं निवासेन हरि भक्ति उपजायते। कोई व्यक्ति अगर एक दिन मथुरा में निवास करता है तो हरिभक्ति उसका हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। ब्रजमंडल 84 को कौन कौन परिक्रमा किया, बहुत सारे लोग किया ना, हरिभक्ति उत्पन्न हुआ, बोलो क्यों नहीं। श्रद्धा दो है, शास्त्रीय श्रद्धा लौकिक श्रद्धा। जब व्यक्ति का शास्त्रीय श्रद्धा होगा वो अपराध नहीं करेगा, जब तक लौकिक श्रद्धा में रहेगा तब तक अपराध करते रहेगा। एक बार अगर शास्त्र में श्रद्धा हो जाता है तो उनको हम इच्छा कोई भी अपराध में नहीं जाएगा, तो उनको ज्ञान हो गए, शास्त्र में कहते हैं। तो वैकुंठस्य गरीयसी ओहो धन्य मधुपुरी, मथुरा धाम वैकुंठ से श्रेष्ठ है, ये बराह पुराण में कहते हैं। तो बराह पुराण में जब ये कहते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, तो हम जब सुनते हैं, तो उस सुनने के बाद हम जो मथुरा में चरण रखेंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रेन से उतार के सबसे पहले प्लेटफॉर्म में दंडवत मारेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, बैग को कंधा में लेके ऑटो की तरह देखता हूं, चलो इसका मंदिर, जैसे प्लेटफॉर्म में उतरेंगे वैसे ही दंडवत, क्योंकि हम मथुरा धाम में आ गया, धाम को दंडवत प्रणाम को चरण रखा ना, धाम में चरण रखना, उसको दंडवत करके ओहो धन्य मधुपुरी, वैकुंठ श्रेष्ठ क्यों, वैकुंठ श्रेष्ठ क्यों हो गया, क्यों वैकुंठ में अजो नारायण विराजित है, लेकिन मथुरा में जन्मशील नारायण विराजित है। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, अजो जिसका मां बाप नहीं उसका मां बाप हुआ मथुरा में, इसलिए मथुरा श्रेष्ठ है। श्रवण मथुरा, बदने मथुरा, मथुरा मथुरा मधुर मथुरा, कुछ करने दिन भर मथुरा मथुरा करते रहे भगवत दम जाओगे, कुछ करने का आवश्यक नहीं है। अरे मथुरा 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 करते रहो नो प्रॉब्लम, इतना धाम का ताकत है। उस मथुरा में भगवान का आविर्भाव हुआ दीक्षा विधि के द्वारा कहते हैं। तो जिस दिन हम लोग से दीक्षा होते हैं भगवान, उस दिन गुरु महाराज के द्वारा भगवान को प्रदान किया जाता है, ये हमारा दुर्भाग्य उनको देख भी नहीं पाते हैं। इसलिए शास्त्र ज्ञान के द्वारा हमें उस भगवान को देखने के लिए हमारा अनर्थ नियुक्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सत्यं विशुद्धं वसुदेव सवितं यदि अते पुमान अपावितं, चौथा स्कंद का श्लोक होगा, चौथा स्कंद तीसरा अध्याय 23 नंबर श्लोक होगा सर, जहां पर 4-3-23 देखो, सत्यं विशुद्धं वसुदेव सवितं, इसका स्वभाव है ना, किसका स्वभाव है, दक्ष प्रजापति का स्वभाव है। और उस स्वभाव में ब्रह्मा शिव विष्णु सब बैठा हुआ है, दक्ष प्रजापति स्वभाव में प्रविष्ट हो रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों में से कोई खड़ा नहीं हुआ, बाकी सब खड़ा हो गया, दक्ष प्रजापति प्रेसिडेंट आ रहे हैं, हनुमान पूर्वक सब खड़ा हो गया। जब शिव जी खड़ा नहीं हुआ तो इनको गुस्सा हो गया दक्ष का, बोला ब्रह्मा खड़ा नहीं हुआ चले वो तो मेरा बाप है, विष्णु तो देवदेव महा ये है तो उसको कोई बात नहीं चलता है चलो, लेकिन शिव तो मेरा जमाई है कि नहीं है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ, क्रोध हो गया। तब घटना लगे वहां नहीं जा रहा हूं, छोटी ने पूछा कि हमारा पिताजी जब आए तो आप खड़ा क्यों नहीं हुआ, तब ये श्लोक इन्होंने कहा था, सत्यं विशुद्धं वसुदेव सवितं यदि नेति पुमान आवृतम, सत्य तो शुद्धं मुझे याद नहीं है, शुद्ध सत्य हृदय का नाम वसुदेव है। भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर अपना अविद्याहरण नाट मंदिर में लेक्चर दे रहे थे यही वसुदेव जन्माष्टमी का अगला दिन चैतन्य मठ में, सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत ठाकुर उन्होंने कहा कि आप सबको अपना हृदय के वसुदेव बनाना चाहिए, जब आप लोग अपना हृदय को वसुदेव बनाओगे तो आप सबके हृदय में वासुदेव का आविर्भाव होगा, और जब तक वासुदेव आविर्भाव होगा तब तक नंददुलाल का आविर्भाव नहीं होगा। क्यों, तो वासुदेव नंददुलाल का संपर्क क्या है, कि वासुदेव आविर्भूत होगा तो क्या होगा, वासुदेव के चार हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, जीव का अनर्थ कितना है अभी क्या है, तो चार अनर्थ को नष्ट कौन करेगा, वासुदेव ही करेगा ना, तो जो अनर्थ निर्मुक्त हृदय होगा तब यशोदानंदन का आविर्भाव होगा। पहले अनर्थ निर्मुक्त हृदय करना पड़ेगा, यथा स्वरूप में अपन पहला अनर्थ है, हृदय दैर्बुल्य दूसरा अनर्थ है, नाम अपराध तीसरा अनर्थ है, और एक है चार है याद आएगा तो बोल दूंगा, ये चार अनर्थ है। एक चार अनर्थ को नष्ट करने के लिए वासुदेव का आवश्यक है। हम लोग भागवत में पाठ करते क्या बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम लोग बोलते हैं क्या, गोपुरमा जन प्राण प्रेवसति प्रभुष्णवे तदीय प्रिय दास्याय मांगमदीय महंगदे, हम लोग बोलते हैं श्लोक, गोपुरमा जन प्रिय प्राण प्रिय प्रभुष्णवे तदीय प्रिय दास्याय मांग मदीय महंग ददे, गोपो रामा जन प्रिय कौन है, गोपो रामा गोपो स्त्री गोप कुमारी उनका प्राण से प्रिय, वो नंद दुलाल नहीं है, वो कौन है, रास बिहारी। भगवान का लीला बहुत है और भगवान का लीला विलास भी बहुत है और भगवान का लीला विलास युक्त नाम भी बहुत है और भगवान का लीला विलास युक्त नामावली का आस्थादन करने वाला भी बहुत सारे भक्त है और उस भक्त का उस स्थिति को उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत यज्ञ होना आवश्यक है तभी हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला, ये पहले अनर्थ निवृत्त करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वारा, फिर बोलना गोपुरामा जन प्राण प्रिय प्रभु जन भी, अनर्थ निमित्त ने वासुदेव को हृदय में धारण करने का अभी तक क्षमता ही नहीं हुआ, तो फिर नंद दुलाल के पास कैसे जा सकता हूं, तो फिर वासुदेव को तो हृदय में धारण करे दीक्षा मिला, गुरु तत्व ने कृपा करके वासुदेव को तो हमें दे दिया, जिस दिन मंत्र मिला उस दिन भगवान मिल गया, मंत्र और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उस मंत्र का जप करने के लिए जो हमारा क्या होता है चित्त वैकल्प कहते हैं उसको, ले देके 70 बार इतना भी जप करने में हमारा प्रॉब्लम हो जाता है, दुनिया का दुश्चिंता आता है। जब मंत्र जब सुचारू रूप में होगा तो मंत्र देवता का हृदय में आविर्भाव होगा, आपका श्रद्धा हो चाहे ना हो। गोप कुमार और ब्राह्मण कुमार, ब्राह्मण कुमार को कामाख्या देवी ने दशाक्षर मंत्र दिया, कामाख्या देवी को आराधना करते थे इसके लिए, धन प्राप्त करने के लिए, हमें कुछ धन मिल जाए, तो देवी ने उसको दशाक्षर मंत्र प्रदान किया। कामाख्या देवी कौन है, दुर्गा, तो दुर्गा का वैसे मंत्र कहां से आ गया, दुर्गा जो है मंत्र का रक्षा करता है, वॉचमैन आवरणी शक्ति, उन्होंने मंत्र प्रदान किया, तो ब्राह्मण ने इसको कुछ मंत्र क्या है कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन देवी दुर्गा कहा तो बोला चलो जब देवी ने कहा तो जप करता हूं, कुछ ज्ञान नहीं था फिर भी जप करते करते इसको क्या हो गया, वैराग्य आ गया, हमें आता है वैराग्य, इसको बोलता है शास्त्रीय श्रद्धा। उनका वो मंत्र जप करते करते उनका कुछ ज्ञान नहीं था, जो मंत्र मिला बोला क्या है क्या नहीं क्या विधि कुछ नहीं मिलम पड़ा, फिर भी उन्होंने देवी का आदेश से जप करते उसका वैराग्य हो गया, उन्होंने धन का कामना करता था तो धन का कामना निर्वृत्ति हो गया। क्या हमारा धन कामना से निवृत्ति हुआ है, मौका मिलता तो एकाध मार लेता हूं, कैसे लेता हूं बोलो, हवन करने नहीं जाता हूं, लोग पैसा नहीं देता है, लेता कि नहीं लेता हूं, ये है धन का लालसा, इसको कहते हैं लालसा नहीं होना चाहिए, तो मंत्र का अगर श्रद्धापूर्वक जाप किया जाए तो पहला अनर्थ निवृत्ति होता है, लोभ दुरुपयोग हो जाता है, फिर वैराग्य आ जाता है, उन्होंने संसार छोड़कर निकल गया। अब जिन्होंने धन कामना के लिए देवी की आराधना किया, देवी से मंत्र प्राप्त होने के बाद उनका लोभ चला गया और वैराग्य आ गया, भिक्षा का झोली लेके बाहर निकल गया, जिस दिन जो मिला खाया, नहीं मिला छोड़ गया, ये होता है भिक्षा। इस प्रकार हमें भी दीक्षा मिला लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यही वैकुंठ में भगवान वासु के रूप में विराजित है, सदा सन्निहित हरि, भगवान श्री हरि सदा सर्वदा में वैकुंठ में निवास करते हैं, अपना मथुरा में निवास करते हैं। यही मथुरा जब हमारा अनर्थ निवृत्ति होगा तब हम गोकुल जाएंगे, मथुरा से गोकुल। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा तब तक अगर गोकुल जाएंगे तो क्या होगा, ब्रह्मा भी अपना बुद्धि लेके गोकुल चला गया था, अपना बुद्धि को दूर लगा करके ब्रह्मलोक निवासी है, अपना बुद्धि को दूर लगाया, बोला चलो अभी गोकुल जाते हैं, देखता है गोकुल में क्या हो रहा है, बोलता है ना जाके क्या कर पाया, अपराध लेके घर घुस गया, पहले क्या किया बछड़ा को चुराया, फिर बच्चा को चुराया, चोर बन गया, चोरी जो वित्तीय अवलंबन किया ब्रह्मा ने, इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होने के बाद गोकुल में जाके चोरी किया, वो भी कृष्ण का संपत्ति, अपना संपत्ति ले तो ठीक है चलो भाई अपना ब्रह्मा ने, लेकिन कृष्ण का संपत्ति चोरी करके वहां से भागा। तो ऐश्वर्य बुद्धि विधि भक्त नहीं पाए ब्रजेंद्र नंदन, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर मन, विधि भक्ति करी भक्ति वैकुंठ ते जाए, जो विधि भक्ति है उसमें वैकुंठ तो गति होगा, उसको आगे नहीं। इसलिए भगवान ने कहा ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीति, ऐश्वर्य भाव युक्त होके भजन करेंगे तो भगवान प्रीति नहीं होता है, खुश नहीं होते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा नंद कुमार को देखने के लिए आए थे गोकुल में, देखता हूं कैसा है, अपना बुद्धि से भगवान को मापने आया था, आके चूरी करके घर चला गया, भगवान ने उससे बात भी नहीं किया। भगवान ने कहते हैं बृहद भागवतम में तो सप्तम स्वर्ग में कहते हैं पहला पाठ में, जे उस समय समस्त देवता लोग हमारा सामने आते थे लेकिन उन बात करने तो कभी मुझे इच्छा नहीं होता था। भगवान ने कह रहे हैं किसको, उद्धव को कह रहे हैं, किसको सुना रहा है, सत्यभामा को सुना रहा है, रे मूर्ख सत्राजित कन्ये, तुम्हारा जो मान है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, मैं जब गोकुल में था तो समस्त देवता लोग भी आते थे रास्ता में लेकिन उससे बात करने तक मेरा इच्छा नहीं होता था। तो गोकुल का माधुर्य क्या है, गोकुल का मधुरता लोग जब बाहर आते हैं उनको लोग स्तब करते हैं लेकिन जो बांधा हुआ रहता है उनको कोई स्तब करता है नहीं। गोकुल का मधुरता ऐसा है जो बांधा हुआ है फिर भी स्तब कर रहा है, नलकूप नहीं किया कृष्ण को रस्सी बांधा हुआ नहीं जाके था ना, तो एक बांधा हुआ है दूसरा मुक्त हो गया, मुक्त होने पर बांधा हुआ का स्तब कर रहा है, ये सब उल्टा विपर्यय है, गोकुल में सब उल्टा पलटा है, कोई सही तरीके से है ही नहीं गोकुल में। उस गोकुल में शिव जी भी गया, ब्रह्मा तक जाके अपना कुछ करके आया, शिव जी जब गया तो शिव जी का हाल क्या पिटाई हो गया, दे धनादन दे दिया शिव जी को गोपी लोग, उसको पूछो तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा माँ कौन है, तुम्हारा ससुराल कौन है, तो शिव क्या जवाब देगा? लड़की बन के गया था रास में प्रविष्ट होने के लिए, तो जब जवाब नहीं दिया तो उसको पिटाई। भगवान अंदर हंस रहा है, फिर आए बोले बोले दुर्वृत्ति तुम्हारा कैसे हो गया? बोला प्रभु बहुत लोभ हुआ। बोले लोभ होने से कुछ काम चलने वाला नहीं है, गोपी अनुगत तो चाहिए। बोले कैसे होगा? तो जब ये लोग मालूम पड़ा शिव जी है तो गोपी बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसको हम लोग अच्छी से पूजा करते हैं। तो समस्त तो गोपी शिव जी को पूजा करिया। बोला आप चिंता मत करो, आप यहीं रोहा करो। तो नाम हो गया शिव जी आया था गोपी का चरण लेने के लिए, गोपी लोग उसको आराध्य देवता बनाकर रख दिया गोपेश्वर महादेव। जय जय गोपेश्वर वृंदावन माध, जय कृष्ण सखा दिजो बटुराज। फिर देखते देखते नारद भी आया, बोला हम भी ब्रज जाए। तो ब्रज जाके उनका तो हाल खराब हुआ। फिर ब्रह्मा और शिव जी ने उनको कृपा करके नारद कुंड में जाके नहाया, फिर गोपी वेश प्राप्त हुआ, फिर जाके उन्होंने महागाने उद्धव जी आया, ज्ञान का भंडार साक्षात बृहस्पति का शिष्य, वो भी आ गया। उसका क्या हाल हुआ तो देखा होगा आप लोग रामानंद सागर का सीरियल में। उन्होंने क्या बोला, आसाम हो चरण ऋतु जुसा मोहंग संग वृंदावन गुलमोलो तो ओस ध्यान, वृंदावन में गुलमो लता ओषुधिनांग ज सजन आर्य पथं चहित्या भजेर मुकुंद पदवी। जहां आया था गोपी लोग को शिक्षा देने के लिए, अभी इनको क्या शिक्षा दूं, इनको तो प्रणाम करने के लिए मुझे डर आता है, प्रणाम कैसे करूं, क्या करना पड़ेगा? जिसका जो चरण रेणु है, बोला एक स्वयं तो इतना जगह लेता है तो कितना सारा रेणु होगा, बोला नहीं उतना रेणु का हम प्रणाम नहीं, उसमें से एक कौन? गोपी लोग जो चरण रखते हैं उस चरण में जितना सारे रेणु हो एक चरण में, उसका भी एक ही रेणु को वंदना, आसाम हो एक रेणु को वंदना किया उन्होंने, उतना को तो कर नहीं पाया। बोला हमारा इस प्रकार सौभाग्य कब होगा, जब ब्रज में झाड़ बनूंगा, झाड़ बन तो गोपी तो चढ़ेगा नहीं झाड़ में, पेड़ अगर बन गया तो क्या बनना पड़ेगा, घास तीर्ण गुलम ओषुधिना गुलम छोटा छोटा लता, गोपी लोग पाव रख के जाएगा। ये ब्रज है, अरे ब्रज प्रेम है, अरे इस ब्रज प्रेम का साधन करने के लिए साधन विधि भी अलग है। ये सब कुछ का जानकारी हो जाएगा तभी भजन करने में मजा आएगा, नहीं तो यही बोलेगा तुम खा रहे हो मैं जो नहीं मिला, मैं खा रहा हूं तुमको नहीं मिला, ऐसे ही होते रहेगा। भेद दृष्टि, तो हमारा भी भेद दृष्टि दुर्बोच नहीं हुआ, हम ही भेद देखते हैं। वो भेद देखने गया था, कौन गया था? जय विजय किधर वैकुंठ में, बोला वैकुंठ तो कोई कुंठा है नहीं है, फिर भी वैकुंठ में कुंठा कहां से आया, दृष्टि कहां से आ गया? नंगा होकर भगवान को दर्शन करने जा रहे थे, चार कुमार है इतना ही है तो क्या कपड़ा मिलने का जरूरी है, बहिर्दृष्टि नहीं व्यक्त है, चिंता नहीं बहिर में क्या हो रहा है क्या नहीं देखने कोई आवश्यक नहीं है। अरे बापरे कपड़ा भी नहीं पीना, अंदर आ रहे हो, रोक दिया, रुका तो क्या लाभ हुआ, असुर जन्म प्राप्त हो गया। तो भेद दृष्टि में क्या जन्म मिलेगा? वैकुंठ से डिगवा जी, इसलिए हम अहम सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते पराम, सब जीवों में समबुद्धि होना आवश्यक है। अगर समबुद्धि नहीं है, विषम बुद्धि अगर होगा तो असुर मिलेगा। बहुत सारे चीज है, बहुत सारे समय भी हमारा हो गया, हम अभी उठने वाला है, हमें सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए। मनुष्य जन्म मिला, पहला गुण हमारा ये है, पहला गुण मनुष्य जन्म मिल गया। दूसरा गुण क्या है? इस्कॉन को, इस्कॉन में घुस गया, ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण, खाने पीने का टेंशन नहीं, खाली लेके बैठ जाएंगे, नो टेंशन, आते रहेगा। चौथा गुण क्या है? फिर भी हम हरि भजन नहीं करेंगे। इस संसार में रहना खाना छोटा टेंशन है, और इस जुनू के लिए लोग सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। दूसरा कुछ चीज है क्या? अपने रहने के लिए घर चाहिए और खाने के लिए कुछ, उधर भरण करने के लिए कुछ चाहिए, इसके लिए लोग सुबह शाम दौड़ झाँप कर रहे हैं। हमारे लिए दोनों सुलभ है, बिना टेंशन का, कभी कोई छप्पन भोग भी मिल जाता है, इसे आज मिलने वाला है। लेकिन हमें भजन में इसी प्रकार इंटरेस्ट होना चाहिए जैसे इस चीज में हमारा इंटरेस्ट है। तो समय स्वल्प है, कब मरेंगे कोई ठिकाना नहीं है, अभी भी मर सकता हूं, गारंटी नहीं। इन सब आशा करता हूं और ज्यादा दिन जिएगा। जितना सर यहाँ बैठा हुआ सबको मालूम है कोई मर सकता है, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं या आप कुछ आपको अभी तो 20-25 साल, नो टेंशन। हमारा विचार क्या होना चाहिए? जावन मृत्यु, जब तक मृत्यु नहीं आता है तब तक हमें भगवत धाम जाने का योग्य बन जाना चाहिए। दुनिया चलते रहेगा, नो टेंशन, कितना आया कितना गया हम देखते रह गया। जिस चीज को प्राप्त तो नहीं होता है उसी चीज के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हरि भजन करो, हरि नाम उच्चारण करो, शांति पावे जीवन है, ठीक है। हरे कृष्ण। हमने दोनों बुक लाया था उसको ऐसे ही रख दिया। चलो।